بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحزن, درس نمبر 23. عید سے پہلے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اب بیلنس کے بارے میں, کیونکہ ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں پڑھ چکے ہیں جو کافی انٹینس سبجیکٹس ہیں اپنی ایک ہشاش بشاش اور خوش زندگی گزارنے کے لیے, تو ان سب چیزوں میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر ایک انسان اگر وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لے, وہ اپنی ترجیحات بھی معلوم کر لے اور اپنے رولز بھی معلوم کر لے اور ان رولز کے مطابق وہ گولز بھی بنا لے, اور جب وہ اپنے گولز بنا لے تو پھر وہ اپنی ایک ویژن بھی لکھ لے, اس حد تک جب ایک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر زندگی کے آؤٹ آف بیلنس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, دماغ جو ہے اس کی تو کوئی کیپیسٹی ہے ہی نہیں, ہمیں نہیں پتہ. ہم تو صرف اپنا مے بی 1% دماغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنا یہ دماغ کھولتے ہیں اور ہم ایسی ایسی باتیں سوچنی شروع کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سوچی, تو ہم اپنے دماغ کے مختلف حصوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی امیجنیشن بڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنا صبر یا برداشت کرنے کا مادہ ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے ہم ایسے کام کرتے ہیں اس پروسیجر میں, اس پروسیس میں, کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے. اور جب دماغ ایک نیا کام کرتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے حصے ایکٹیو ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایک, مثلاً اس کی ایک سب سے زبردست مثال جو ہے وہ ایک نئی لینگویج سیکھنے کی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. اور جب لوگ ایک نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں بیلنس اپنے آپ کو, یعنی کہ توازن رکھنے کا, فزیکل توازن رکھنے کے ایریاز ایکٹیو ہوتے ہیں, امیجنیشن ان کی زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ان کے دماغ میں ورسٹیلیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پلاسٹیسٹی ایک پروسیس ہے, ایک کوالٹی ہے دماغ کی جو بہت ہی قیمتی کوالٹی ہے, وہ زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ ان چیزوں کا ڈائریکٹلی اس زبان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ لینگویج ایکوزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو جب ایک, میں اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب ایک انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ویژن بنا سکتا ہے اور اس کی اتنی امیجنیشن ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک سال کے بعد کیا کرنا چاہتی ہوں اور میں 5 سال کے بعد کیا کرنا چاہتی ہوں, بلکہ میں اپنی پوری زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہوں اور میں اس دنیا میں میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں گے, تو یہ بڑے ہی قیمتی سوالات ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دماغ کے بہت سے حصوں کو جگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جہاں پہ تمہیں اللہ کی یاد آئے. تو یہ مطلب, اس کا تو مطلب سمپل مطلب تو یہ ہے کہ آپ جا کے کسی مدرسے میں بیٹھ جائیں یا کسی استاذہ کے پاس بیٹھ جائیں جو خاتون قرآن پڑھاتی ہیں یا حدیث کا ذکر کرتی ہیں. تو اس کا exactly, یعنی کہ اس کا ایکسٹینڈڈ مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں جو آپ کے ہورائزنس کو کھولیں, جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے جو تصور کا افق ہے وہ بڑا ہو جائے, وہ کھل جائے, اور آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ زندگی اللہ نے کس قدر قیمتی چیز اور کتنا خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے, اور یہ زندگی اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضائع کر دیں. میرے کپڑے میچنگ ہیں کہ نہیں ہیں, اور میرا بچہ اس طرح کی حرکت اس نے کیوں کر دی ہے, اور میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا ہے, اور میرے سسرال والے کیوں میری مرضی کے مطابق نہیں ایکٹ کرتے, اور میرے بہن بھائی کیوں میری رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیں, یہ سارے زندگی کے حصے ہیں لیکن یہ زندگی نہیں ہے. تو اسی لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو آپ کے ہورائزنس کو, آپ کی امیجنیشن کو کھولیں. اللہ کی یاد یہی ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں. تو خیر, یہ تمہید تو میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اب اتنا کچھ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے 20-22 درسوں میں, ان سیشنز میں, اگر آپ نے وہ سارے سیشنز سنے ہیں واقعی اور آپ نے وہ امیجز پہ غور کیا ہے اور آپ نے وہ ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کی ہے جو میں بتاتی رہی ہوں, تو آپ ایک سٹیج پہ اب یقیناً پہنچ گئی ہوں گی جس میں آپ بہت سی چیزیں, آپ کے دماغ میں ایسی سوچیں اور ایسی باتیں آئی ہیں جو پہلے کبھی بھی وہاں پہ نہیں تھیں. और जब ये होता है, जब दिमाग ओवरऑल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम एक बैलेंस अप्रोच कैसे इख्तियार करें, कहीं हम आउट ऑफ बैलेंस ना हो जाएं, यानी हम कहीं अपने विज़न को ही प्यारे ना हो जाएं, हम ऐसी किसी ऐसी चीज़ के पीछे लग जाएं जिसके ऊपर फिर हम अपनी अपना वक्त और अपनी तवानाई और अपने पैसे और अपने रिश्ते और सारी चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें और हम बहुत सी ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ों से महरूम रह जाएं। तो ये जो अगले चंद सेशंस आपके हैं, दे आर टोटली अबाउट फाइंडिंग योर बैलेंस। आप देखेंगे, मैं आपको जो नोट्स मैंने अपने लिए लिखे हैं उसकी तस्वीरें भी मैं आपको भेजूंगी। वो विजुअल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो चीज़ आपके जहन में खुब जाती है। पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज़ बैलेंस, यानी कि जो मेरे लिए एक बैलेंस है क्या वो आपके लिए भी बैलेंस है, या जो आपका बैलेंस है जिस सिचुएशन में आप सबसे ज़्यादा खुश फील करती हैं और रिलैक्स फील करती हैं, क्या वो मेरे लिए भी वैसा ही है? क्या आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर अफशाम, मैं तो जब मसलन ये काम कर रही होती हूँ, मसलन मैं एरोबिक एक्सरसाइज कर रही होती हूँ या योगा कर रही होती हूँ या वॉक कर रही होती हूँ या मैं कुछ पका रही होती हूँ या मैं एक पेंटिंग कर रही होती हूँ, तो मैं तो बड़ी ही रिलैक्स होती हूँ और मैं तो समझती हूँ बस मेरी ज़िंदगी सेट है एंड आई एम इन माई ज़ोन। तो क्या वो काम करके मैं भी अपने ज़ोन में दाखिल हो सकती हूँ? मैं कहूँ कि भाई मुझे तो उन्होंने ये कहा था, मेरी प्यारी दोस्त ने, कि डॉक्टर अफशा आप निहारी पकाएं और उसके अंदर जो मुख्तलिफ मसालों की खुशबुएं हैं ओहो वो तो आपको इतना रिलैक्स कर देंगी, तो क्या डॉक्टर अफशा भी निहारी पका के उस जोन में पहुंच जाएंगी जिसमें उनकी दोस्त पहुंच गई थी? या अगर डॉक्टर अफशा ये कहें कि यार मैं तो रात को मैंने वो एक मरीज़ देखा था, बड़ा ही क्रिटिकल था और अब सुबह वो स्टेबल हो गया है, तो मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ सेट है, तो क्या डॉक्टर अफशा जब मरीज़ की सफ़रिंग को उन्होंने देखा और तकलीफ़ को देखा और उन्होंने कोई दवाई दी और जो भी किया उन्होंने और वो उस जोन में पहुंच गई और वो रिलैक्स हो गई, तो क्या वैसा काम करने से आप लोग भी उस बैलेंस को अचीव कर लेंगे? ऐसा नहीं है। इट्स कॉमन सेंस कि आपका एक अपना जोन है, आपका एक अपना लेवल है, आपका अपना बैलेंस है। मेरा अपना जोन है, मेरा अपना लेवल है, मेरा अपना बैलेंस है। ये हर इंसान के साथ यूनिक होता है और जैसे हर इंसान की अपनी विजन यूनिक होती है, उस तरह हर इंसान का जो वो जोन है और जो वो खुश रहने का जो उसका एक फार्मूला है और एक बैलेंस जो उसकी ज़िंदगी में उसको चाहिए होता है, वो सब मुख्तलिफ होते हैं। तो इसीलिए मैंने जो पहली चीज़ आपके लिए यहाँ लिखी है वो ये है कि द बैलेंस, यानी कि हमारे ख्याल में एक चीज़ है जिसके हम बड़े खुश हो जाएंगे और हम एक जोन में पहुँच जाएंगे, क्या वो हमारा भी बैलेंस है? तो दैट इज़ नॉट राइट। द बैलेंस इज़ नॉट इक्वल टू योर बैलेंस। आपका जो मुतवाजन ज़िंदगी और हशाश बशाश खुश ज़िंदगी का एक फार्मूला है, वो अपने घर वालों से भी मुख्तलिफ है और हमसे भी मुख्तलिफ है और हमारा एक दूसरे से भी मुख्तलिफ है। सबसे ज़रूरी बात जो आपने तवाज़ुन और बैलेंस में सीखनी है वो ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली यूनिक। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे ना, तरजीहात भी सबकी होती हैं, रोल्स भी सबके होते हैं, गोल्स भी सबके होते हैं, विजन भी होनी चाहिए, और हमने नोट किया कि ये चीज़ें हमारी खासी ओवरलैप करती थी। आप बहुत से लोगों की विजन कोइंसाइड करती थी, ओवरलैप करती थी, बल्कि हम इंशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे हया अल फलाह पे भी, हिट एंड फिट पे भी, कि ये दिस इज़ समथिंग कॉन्क्रीट दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत बड़ी बात है ये। तो हम वो चीज़ें तो हमारी कोइंसाइड कर जाती हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वो हम दुनिया में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दुनिया में अपने रिश्ते और अपने रोल्स एंड गोल्स बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो इन सब चीज़ों को पॉसिबल बनाती है, जो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप की तरजीहात भी ठीक होंगी और आप अपने रोल्स भी सही तरह पहचानेंगी और आप अपने गोल्स भी सही तरह अचीव करेंगी और आपकी विजन भी ऐसी होगी कि उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको भी और दुनिया को भी। तो वो चीज़ जो है वो इंसान के अंदर होती है, वो उसका अंदर का तवाज़ुन है, वो उसके अंदर का बैलेंस है, और आज हमने बात उस बैलेंस की करनी है। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो जो मुश्किल बात थी वो ये थी कि चूंकि बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर फ़लसफ़े में डिस्कस हुई है, दुनिया के हर फलसफे में ये बैलेंस जो है उनका एम है। मसलन जो सबसे एंशंट सिविलाइजेशन है दुनिया की वो हिंदू मत है, और उनमें योगा जो है, लफ्ज़ योगा जो है, इसका मतलब भी अगर आप कंपोजिट मतलब इसका लें तो इट इज़ बैलेंस, फाइंडिंग दैट बैलेंस। कि योगा आप इसीलिए करते हैं कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपस में बैलेंस हो जाएं और आपके अंदर एनर्जी का एक ऐसा फ्लो हो कि आप फिर अपने बाकी सारे काम इफ़ेक्टिवली कर सकें और अच्छी तरह कर सकें और आप फिट हो जाएं और आप स्पिरिचुअली भी एनरिच हो जाएं। तो योगा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आप अगर किसी को योगा करते हुए देखें तो वो सब बड़ी मुश्किल आसनाज में और पोजीशंस में अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं, एक हाथ पे और दो हाथों पे और एक पैर पे और सर के ऊपर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ये एंशंट मोस्ट फिलॉसफी जो दुनिया की है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर हमारे पास जो शिंटू जापानी लोगों का मज़हब है और चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है ये भी बहुत पुरानी है, और चाइना में तो येन और यांग का जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक और वाइट का, कि गुड एंड ईवल जो है इन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ होता है, और इसी बैलेंस का नाम जो है वो हमारा इंसान, हम इंसान हैं, हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं, हमारी सोचें हैं, हर चीज़ में गुड और ईवल जो हैं वो ज़रूरी हैं और उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ होता है। शिंटू में भी यही है कि उनको एक यानी कि हैप्पी मिडल जो है उनको फाइंड करना होता है अपने लिए। अब शिंटू का जो कॉन्सेप्ट है हैप्पी मिडल जिसको कहते हैं या द हाईएस्ट मिडल, ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगी, और ये आज आप समझें कि इस टॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। उसके बाद आप आ जाएं और नीचे ग्रीक माइथोलॉजी में, तो उसमें हर एक चीज़ ग्रीक माइथोलॉजी में बड़ी ट्रेजिडीज़ हैं, दुनिया के ऊपर छत गिर गई है और जलजले हैं और जंगे हैं और नफ़रत है और बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, कहानियाँ हैं, रंग बिरंगी कहानियाँ हैं, कोई औरत की मोहब्बत ने किसी ने अपने भाई को मार दिया और किसी ने अपने बाप को जहर दे दिया और वगैरह वगैरह, बड़ी ट्रेजिडीज़ हैं उसमें। तो उसका उन सब बातों का हासिल भी यही है कि हमारी ज़िंदगी जो है उसको एक बैलेंस में होना चाहिए, और जब वो बैलेंस वो लूज़ करती है तो फिर ट्रेजिडीज़ होती हैं और फिर तूफ़ान आते हैं और फिर दुख होता है और दर्द होता है, पेन होता है और मिजरी होती है, क्योंकि वो बैलेंस ख़राब हो गया होता है, द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ डिस्टर्ब्ड। तो ये सारी बातें आप सोचें, ये मैंने सारी बातें सोची कि भाई मैं आपको बैलेंस कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन जो बेहतरीन बात मैंने यानी कि अपने इस लेसन में लिखते हुए रियलाइज़ की कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और कुरान में हमें बताया गया है कि आप एक उम्मत-ए-वस्त हैं, उम्मत-ए-वस्त, ये इससे बेहतर, इससे खूबसूरत लफ्ज़ जो है और इससे ज़्यादा ऑल एनकम्पासिंग टर्म मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे योगा भी पता है, मुझे शिंटू भी पता है, मुझे येन और यांग भी पता है, मुझे बैलेंस ऑफ नेचर भी पता है, लेकिन जिस तरह सुभान अल्लाह यानी अल्लाह ने हमें समझाया है कि आप एक उम्मत-ए-वस्त हैं, आप तो एक बेहतरीन उम्मत हैं जो कि दुनिया में इसलिए भेजी गई है कि वो बुराई से रोके और वो नेकी की तरफ बुलाए, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, और इसी तरह वो दुनिया में अल्लाह के नाम का और अल्लाह के निज़ाम का बोलबाला करे। उम्मत-ए-वस्त हमें कहा गया है, एज एन इंडिविजुअल हमें वस्त नहीं कहा गया। एज एन इंडिविजुअल जो हम चॉइसेस बनाते हैं उसके ऊपर यानी अल्लाह ने, शुक्र है वो नहीं कहा कि वो भी बिल्कुल वस्त होना चाहिए, लेकिन हमें उम्मत-ए-वस्त कहा गया है कि एज अ फैमिली और एज अ ग्रुप हम लोग जो चॉइसेस करते हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो वस्त में होनी चाहिए। अब वस्त का मतलब जो है वो मैंने आपको समझाना है, क्योंकि इसके बाद जितनी पढ़ाई हमने करनी है ये बैलेंस सीखने के लिए, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका मतलब पता हो। वस्त जो है वाओ सीन थ्वे, इसका मतलब है मिडल। हम कहते हैं ना औसत क्या है, एवरेज, एवरेज कहते हैं ना, तो या तो इसका मतलब है एवरेज, या इसका मतलब है दरमियाना, या इसका मतलब है मिडल। लेकिन क्या अल्लाह मियाँ जो है, दुनिया की हम बेहतरीन उम्मत हैं, हम उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या अल्लाह हमें ये कह रहा है कि आप बस मीडियोकर बन जाएं, आप एवरेज बन जाएं, उसे बेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एवरेज रहें तो आप ठीक रहेंगे? کیا اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ وسط کا لفظ جو ہے اس کا اردو میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے وسط عربی کا، جس سے اردو کا اوسط نکلا ہے، جو ہم میتھس میں ایوریج نکالتے ہیں نا، سارے نمبرز کو لکھ کے اور پھر اس کو جو جتنے نمبر ہوتے ہیں اسے ڈیوائیڈ کر کے ہم ایک ایوریج نکال لیتے ہیں، وہ ہے اوسط. لیکن ہم اردو میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو ترجمہ میں لکھا ہوا ہوگا کہ تم ایک بہترین امت ہو، یا لکھا ہوگا تم ایک معتدل امت ہو. عادل، معتدل بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ عادل سے نکلا ہے، یعنی تم ایک برابری کرنے والی امت ہو. یہ دونوں بھی جو ہیں وسط کے لفظ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. وسط جو ہے وہ اب میں نے آپ کو سمجھانا ہے جو میں نے آپ کو شنٹو میں بتایا تھا، جس کو ہائیسٹ مڈل کہتے ہیں. یعنی دا مڈل ویلیو از ناٹ دا مڈل ویلیو، جو درمیان میں ویلیو آ رہی ہے وہ مڈل میں نہیں ہے، وہ بیسٹ ہے. اور شنٹو جو ہے وہ واحد نان اسلامک فلاسفی ہے جو ہائیسٹ مڈل کی بات کرتی ہے. دا ہیپی مڈل جو ہے، یا دا ہائیسٹ مڈل جو ہے، اس کی بات یہ شنٹو بھی ہے. اور قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک امت وسط ہیں. اب وہ کانسیپٹ آپ کو میں نے سمجھانا ہے، اور اس کی میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی آپ کو بھیجوں گی. وہ بڑا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے. آپ امیجن کریں، جیسے ہم گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں، مثلاً 100 لوگ ہیں، مثلاً ہم 100 لوگ ہیں، ہم سارے اپنی ہائٹس یا اپنے ویٹس یا اپنے انٹیلیجنس کوشن جو ہیں ہمارے، کہ ہم کتنے ذہین ہیں، ہم وہ نمبر لکھ کے سارے بھیج دیں، سارے نمبر ایک جگہ ہم جمع کر لیں، تو 100 نمبر ہمارے پاس آ جائیں گے. بھائی میرا قد جو ہے اتنا 5'2" ہے، اور کسی کا قد 5'3" ہے، اور کسی کا 5'4" ہے، اور کسی کا 6' قد ہے، اور کسی کا 4' قد ہے. یہ سارے قد ہم ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں. پھر ہم ان کو سب سے چھوٹا قد لکھتے ہیں. سب سے پہلے 3'6" سب سے چھوٹا قد ہے ہمارے گروپ میں. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، یہاں تک کہ 6'6" جو ہے وہ سب سے لمبا، سب سے ہائی قد ہے. کوئی بہت لمبی ٹال خاتون ہے، مے بی کوئی ماڈل ہیں، تو وہ ہمارے گروپ میں، اور ان کا یہ ہائٹ ہے. یہ ساری ہائٹس ہم لکھ لیتے ہیں. اب ان ہائٹس کو ہم ایک گراف کے اوپر پلاٹ کرتے ہیں. جو لوگ آپ میں سے گراف کے ساتھ اکوئنٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گراف کیسے بنائے جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس گراف پہ ہم یہ ساری ہائٹس لکھتے ہیں ایکس ایکسس پہ، اور وائی ایکسس پہ ہم لکھتے ہیں کہ ہماری لوگوں کے نمبرز، یعنی کہ 5 لوگ جو ہیں ان کی یہ ہائٹ ہے، اور 6 لوگوں کی یہ ہائٹ ہے، اور 7 لوگوں کی یہ ہائٹ ہے. وہ گراف میں جب آپ کو تصویر بھیجوں گی اور چھوٹی ایک شارٹ ویڈیو بھیجوں گی، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر ہم ان سارے نقطوں کو جب ملاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم 100 لوگوں کے گروپ میں سے 30 یا 40 لوگوں کا ایک خاص قد ہے، جو بالکل درمیان میں ہے، جو نہ بہت لمبا ہے اور نہ بہت چھوٹا ہے، ہم بس درمیان میں ہیں. ہمارا جو 100 لوگوں کا گروپ ہے اس کے لیے جو ہے تو یہ ایک خاص قد ہے، واٹ ایور دیٹ، کوئی بھی نمبر لے لیں، مثلاً آپ 5 فٹ لے لیں، تو ہم میں سے 100 میں سے 30 یا 40 خواتین جو ہیں، ہم وہ 5 فٹ والے قد کے پوائنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، جب ہم اس کا گراف بنائیں گے نا، تو جو 5 فٹ کا قد ہے نا، وہ سب سے اونچے پوائنٹ پہ آئے گا، وہ بیچ میں نہیں آئے گا، وہ سب سے اونچے پوائنٹ پہ آئے گا. یہ آپ تصویر دیکھ کے یا آپ میری ایکسپلینیشن دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گا جب آپ گراف دیکھیں گے. یہ وہ ہائیسٹ مڈل ہے، اس کو ہائیسٹ مڈل کہتے ہیں. یعنی کہ اس سے جو چھوٹے ہیں وہ بہت چھوٹے کنسیڈر ہوتے ہیں، اور اس سے جو لمبے ہیں اس قد سے، 30-40 لوگوں کے قد سے جو لوگ پھر لمبے ہیں، وہ پھر بہت لمبے کنسیڈر ہوتے ہیں. مے بی وہ اتنے زیادہ پاپولر بھی نہیں ہوتے، مے بی وہ اتنے پسند بھی نہیں کیے جاتے. لیکن یہ تو میں آپ کو قد کی مثال دے رہی ہوں صرف سمجھانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا ایک پوائنٹ ہو، انٹیلیجنس کوشنٹ ہو، تو کسی ہم سب گروپ کی انٹیلیجنس جو ہے 50-60 لوگوں کی کوئی ایک ہی ویلیو ہوگی، ہم ایک جیسے ہوں گے، اور جس کی اس سے کم ہوگی وہ پھر کم انٹیلیجنٹ کنسیڈر ہوگا، اور جس کی اس سے زیادہ ہوگی وہ تکلیف دہ حد تک انٹیلیجنٹ ہوگا، پھر اس کی باقی زندگی گڑبڑ ہوگی، وہ صرف انٹیلیجنٹ ہی ہوگا. تو یہ جو بہت کم اور بہت زیادہ ویلیوز ہیں، جب انہیں نکال دیا جاتا ہے اور پاپولیشن کا ایک نارمل حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو وہ ہائیسٹ مڈل ہوتا ہے. और वो हैप्पी मिडिल उसको कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बैलेंस जिंदगियाँ हैं और वो स्टेबल हैं और वो खुश हैं और वो अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये वो कॉन्सेप्ट है वस्त का जो मैंने आपको समझाना था, हाईएस्ट मिडिल जिसको कहते हैं। और फिर मैंने आपको वस्त के बारे में चंद कोट्स मैं आपको भेज रही हूँ जो मैंने ट्रांसलेट किए हुए हैं या मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात आसान कैसे करूँ आपके लिए। तो वस्त ये है, वस्त का मतलब किसी से कम या ज़्यादा नहीं होना। वस्त किसी से कंपैरिजन नहीं है, है मैं मोटी हूँ, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, मैं पतली हूँ, इसका कंपैरिजन मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि ये वो मुतवाजन और मोतदिल वैल्यू है जो बेहतरीन है, जो मेरे लिए बेहतरीन है। है जी, हो सकता है मैं पतली हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत से काम नहीं कर सकती, या मैं मोटी हूँ तो मुझे थोड़ा सा पतला होना चाहिए, वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका एक अपना कोई वस्त होगा, आपने वो ढूंढना है, आपने वो बैलेंस अचीव करना है जिसमें आप बेस्ट फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये है कि हर मामले में जो लोग वस्त को सामने रखते हैं, हर मामले में जो लोग ये सोचते हैं कि उनको वो एवरेज पता होती है कि वो उनको वो बैलेंस जिनके पास होता है, ये वो लोग होते हैं जो अपनी सारी तरजीहात को इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करते हैं, मुअस्सर तरीके से पूरा करते हैं। जब लोग बैलेंस लूज़ कर देते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैं कोई एक काम के पीछे अगर पड़ जाऊँ अपनी ज़िंदगी में तो मेरे 500 काम मेरे मुझसे मिस हो जाएंगे। वो एक काम के पीछे मैं पड़ जाऊँगी और मैं बहुत सी चीज़ें लूज़ कर दूँगी। मुझे जैसे मुझे सैर करने का शौक़ है तो मैं सारा दिन सैर ही करती रहूं और मेरे घर वाले भी निगलेक्ट हो जाएं और मेरे पेरेंट्स भी निगलेक्ट हो जाएं, मेरा प्रोफेशन भी निगलेक्ट हो जाए, बस मैं सैर ही करती रहूं। या मुझे आराम करने का शौक़ है, ऐसे लोग होते हैं जिनको लग्जरी पसंद होती है, जो बड़े आराम तलब होते हैं। तो अगर आप सोचें अगर वो सारा दिन आराम करते रहें तो बाकी ज़िंदगी कौन गुजारेगा उनकी। हैं जी, ऐसी बेगमात आपने देखी होंगी ना कि उनको इतना आराम करने का शौक़ होता है और वो इतना सोती हैं और लग्जरी में रहती हैं और पार्लर्स में जा रही हैं और स्पाज में जा रही हैं और फिर बाद में रोती हैं कि हमारे हस्बैंड ने जी नौकर से शादी कर ली, नौकरानी से शादी कर ली और हमारे बच्चे हमें लिफ्ट नहीं कराते। भाई जब आप जिस वक्त इनको निगलेक्ट कर रही थी उस वक्त आपने कुछ सोचा था? आपने उस वक्त बैलेंस के बारे में सोचा था कि मेरा ये आराम का टाइम है लेकिन ये मेरा काम का टाइम है, अब मैंने बच्चों को अटेंशन देना है, मैंने हस्बैंड को टाइम देना है, अब मैंने अल्लाह को टाइम देना है। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। जो आखिरी तस्वीर मैं आज आपको भेज रही हूँ उसमें मैंने सारे रोल्स लिखे हुए हैं। अब ये हर किसी का इंडिविजुअल बैलेंस है, माँ, बेटी, बहन, दोस्त, उस्ताद, मोमिना, सब हमारे डिफरेंट रोल्स हैं। उसमें 1 to 10 परफॉर्मेंस है, 1 इज़ मे बी वेरी लिटल, हम थोड़ा सा ही परफॉर्म कर रहे हैं, और 10 इज़ 100%, बस जी हम डेडिकेटेड हैं उस रोल के अंदर। हैं जी, तो कोई ऐसे रोल होंगे जो आप बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर सकते, मसलन एक माँ का रोल है या एक मोमिना होने का रोल है। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि मैं 7 out of 10 मोमिना हूँ लेकिन वो बाकी नंबर जो है वो सॉरी मैं ना सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ सकती या मैं कुरान को टाइम नहीं दे सकती, तो वो जाहिर है फिर आप उसमें फेल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक बैलेंस है जो आपने अपने लिए डिफ़ाइन करना है, और जब वो बैलेंस आप डिफ़ाइन कर लेंगे, जब आप ये कहेंगे कि आज यार मैं अम्मी के साथ बात ही नहीं की, मैं तो 2 out of 10 वाली बेटी बन गई हूँ, लेकिन जब मैं बेटी 2 out of 10 बन गई तो माँ मैं फिर 10 out of 10 थी, मैंने सारा टाइम अपने बच्चों को दिया है। तो कल फिर आप ये कहें कि अच्छा यार आज मैं 7 out of 10 अम्मी बन जाती हूँ और मतलब कि 7 out of 10 बेटी बन जाती हूँ, क्योंकि जाहिर है अम्मी को भी टाइम देना है या मुझे मेरी सास का भी ये काम करना है, या आज जो है ना तो आज मैं सब बहुत सारे काम मैं अपने कल कर चुकी हूँ, आज मेरा अपना दिन है, बस मैंने आज रिलैक्स होना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज मैं 10 out of 10 दोस्त बन जाती हूँ, अपनी किसी फ्रेंड के पास चली जाती हूँ, उम्मीद है कि जो बाकी मेरे रोल्स हैं उसमें मैं सारा हफ्ता इतना इन्वेस्ट कर चुकी हूँ कि मसला नहीं होगा, लोग मेरी मुझे मिस नहीं करेंगे, लोग बच्चों के लंच भी मैं बना चुकी हूँ और उनके होमवर्क भी करा चुकी हूँ और उनके यूनिफॉर्म्स भी ठीक हैं और मैं बैंक का चक्कर भी लगा चुकी हूँ और मैंने हस्बैंड के सारे काम भी कर दिए हैं, तो आज मैं ना अपने लिए कोई 6-7 घंटे आराम से निकाल के आई विल हैव अ चिल टाइम। तो वो ये बैलेंस की ब्यूटी ये है कि जब एक दफ़ा आप ये बैलेंस अचीव कर लेते हैं तो फिर उसमें आप अपनी विजन को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बना सकते हैं, अपने आप को देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं, अपने प्यारों को एनरिच करने के लिए भी आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं और मज़ीद मेहनत कर सकते हैं। आपको ये एहसास होता है कि ये जो आप समझते थे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो जब आप एक बैलेंस के तहत काम करना शुरू करते हैं तो आपके पास एकदम से टाइम ज़्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे आपका टाइम कम हो जाएगा जब आप इतने सारे रोल्स में काम कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिलॉसफी इसीलिए कामयाब है रोल्स एंड गोल्स की, क्योंकि इसमें बैलेंस सिखाया जाता है। और जिसकी आज आपने पहली किस्त सीखी है, आपको सिर्फ उम्मीद है ये एहसास हो गया होगा कि ये बैलेंस किस कदर खूबसूरत चीज़ है और ये किस कदर ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये अचीव करनी है। हमें हर ज़िंदगी के मामले में वस्त में रहना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें उम्मत वस्त कहा है। और उम्मत वस्त की वजह जो अल्लाह ने बताई है वो ये है कि तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। तो हर जगह पर जितना हो सके हत्तल वसा गलत काम जो है उसे रोकना है, उसे कंडेम करना है, उसके ख़िलाफ़ बोलना है, वो नहीं करना है। और ठीक काम और अच्छे काम को इनक्रेज करना है, उसे फैलाना है, उसे लोगों में आम करना है, उसे ख़ुद अपनाना है। एक दफ़ा आप ये एक्सरसाइज करनी शुरू करें और आप ये रियलाइज़ करें कि आपने हर रोल में, अपने हर रोल में और अपनी हर तरजीह में आपने वस्त इख्तियार करना है। और वस्त जो है दैट इज़ द हाईएस्ट मिडल, यानी कि हाईएस्ट मिडल की मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी, मसलन उनके दो बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे टॉपर हैं और वो ए स्टार हैं। बस वो तो जी सोने के बने हुए बच्चे हैं, वो तो मार्स से आए हैं, इस दुनिया की मखलूक ही नहीं है। और उनको देख के आप कुड़ती रहती हैं और आपको एहसास होता रहता है अल्लाह मेरे बच्चे कभी बी आता है, कभी बड़ी मुश्किल से ए आता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना जी। अब आप अपनी उस दोस्त को ज़रा स्टडी करें, उसकी ज़िंदगी में देखें कि वो उसने ये अचीवमेंट की है, क्या उसकी बाकी ज़िंदगी बैलेंस्ड है? क्या उसका शोहर भी उससे खुश है और उसका उसके पेरेंट्स भी और बहन भाई और फ्रेंड्स और उसके ससुराल सब उससे ऐसे ही खुश हैं जैसे उसके बच्चों के टीचर्स उससे खुश हैं, या जैसे उसके बच्चे ए स्टार ला रहे हैं? क्या वो ज़िंदगी के बाकी मामलों में भी ए स्टार है? अगर है तो आप उससे ज़रूर जाके पूछें कि यार बीबी प्यारी बहन फ्रेंड आप मुझे बताएं ये आपने कैसे अचीव किया है ये बैलेंस, फिर आप उनसे सीखें। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसे लोग नहीं पाए जाते होंगे, कोई बड़े रेयर लोग होंगे, मैंने नहीं देखे। फिर आप अपनी ज़िंदगी को स्टडी करें कि अच्छा यार मेरे बच्चे बी ला रहे हैं, मुसलसल बी ला ए नहीं हो पा रहे, तो मेरी ज़िंदगी में कहाँ पर ऐसी बात है जो ऑफ बैलेंस है? यानी बच्चे तो सारे एक जैसे होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्या मैं इनको टाइम नहीं दे रही? क्या ये स्कूल में इनकी कंपनी ठीक नहीं है? क्या ये खुद टाइम नहीं दे रहे, मोबाइल्स पे और टैब्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बिलीव मी, थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा सा अंदर अपने गरेबान के अंदर और अपने दिल के अंदर झांकना जो है ना, उससे आपको फौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे आपका वस्त जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है और आप वस्त में नहीं हैं। आप या बहुत कम की तरफ जा रही हैं और या बहुत ज़्यादा की तरफ जा रही हैं। और वो कम और ज़्यादा का जब आपको फीता पता चल जाएगा ना, आपको ये भी पता चल जाएगा कि वस्त कहाँ है और मैंने उसके अंदर कैसे परफॉर्म करना है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड बात है। अगर सवाल हो तो ज़रूर मुझे भेजें, मुझे खुशी होगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने इंटरनलाइज़ करना है। अभी तक आपने जो कुछ सीखा है ला तहज़न में, ये आप समझें कि अब उसका पेरेंट सब्जेक्ट है। अब आप ग्रेजुएट कर गए हैं माशाल्लाह, ला तहज़न में आप समझें कि आपने बीए कर लिया है, अब ये मास्टर है। ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो मैं बड़ी खुशी से ला तहज़न को रैप अप करूँगी और आप बैलेंस, जब इंटरनल बैलेंस आप सीख लेंगे और किस किस चीज़ में फिर हमें स्पिरिचुअल बैलेंस चाहिए है, हमें फ़िज़िकल बैलेंस चाहिए है, हमें फाइनेंशियल बैलेंस चाहिए है, हमें हर लिहाज से सोशल बैलेंस हमें चाहिए है, जब हम वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे तो अगले आपके जितने लेक्चर्स हैं, मेरे ख्याल में अच्छा खासा एक 10-12 लेक्चर्स की ये सीरीज़ होगी कि हाउ टू अचीव इंटरनल बैलेंस। वो उम्मत वस्त हम कैसे बनेंगे जो अल्लाह ने हमारे लिए कुरान में कहा है, और फिर ये कहा है कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम तो वो बेहतरीन उम्मत हो, खैर उम्मत, जो लोगों के लिए निकाली गई, आम लोगों के लिए, इंसानियत, पूरी इंसानियत के लिए निकाली गई है। तन्हौना अनिल मुनकर व अमूर बिल मारूफ, तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। बस ये याद रखें, ये वो बैलेंस है, बुराई से रोकते हो, खुद बुरा नहीं करते हो, किसी को करने नहीं देते हो, जहाँ पे देखते हो उसे रोकते हो।